परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
शांति, अभी जो सीरीज चल रही है रुहानी क्रांति के सूत्र, इसमें आज 15वां दिन टॉपिक है रूहानी डॉक्टर, और जो मुरली की डेट है वो है 14 जनवरी 1980। इस मुरली में बाबा ने जो मेन बात कही है कि डॉक्टर है प्रति की, कि हमें क्या करना है कि एक सेकंड में किसी के भी पुराने संस्कार को नैनों की दृष्टि द्वारा समाप्त करना है, कि उस समय के लिए वो आत्मा अपने पुराने संस्कार से मुक्त हो जाए। तो कि हमें चेक करना है कि हमारे में इतनी पावर के इतनी शक्ति है जो हम सामने वाली किसी भी आत्मा के पुराने संस्कार को सेकंड में समाप्त कर सके। तो इसके लिए पहले तो क्या हमें, जैसे इस मुरली में भी इंजेक्शन के लिए बाबा ने कहा है कि ऐसा इंजेक्शन लगाओ जो शुद्ध बुद्ध भूल जाए, कि जैसे कोई आता है इनको दर्द होता है तो ऐसे ही कि जो पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो क्या अपना दर्द भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगाओ जो वो पुरानी दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल जाए, बेहोश, पुरानी दुनिया से बेहोश हो जाए। लेकिन उसमें बाबा ने कहा कि पहले क्या करना है कि पहले खुद को इंजेक्शन लगाना है, अनुभव करना है, फिर दूसरों पर कर सकेंगे कि प्रयोग कर सकेंगे। तो बाबा ने हमें ज्ञान की अलग अलग कितनी सारी पॉइंट दी है कि सबको, कि पहले जो भी आता है उनको 7 दिन भट्टी में रखो। तो हमें पहले क्या अपने ऊपर प्रयोग करना है कि जैसे ज्ञान की, जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई, मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो इसके लिए बाबा ने हमें कौन से ज्ञान की पॉइंट दी है, ड्रामा की पॉइंट दी है कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, कि ड्रामा परफेक्ट है, कल्याणकारी है और हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो ऐसे सारी परिस्थिति के लिए बाबा ने हमें ज्ञान की अलग अलग पॉइंट दी है। तो इसमें बाबा ने कहा कि ऐसे तुम खुद को ही पहले ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ जो पुरानी दुनिया से बेहोश हो जाओ, कि शुद्ध बुद्धि भूल जाइए। कि जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं उसका वो क्या करते हैं, कि जैसे बोलते हैं कि सूंघाते हैं दवा, तो वो अपना जो भी इंजेक्शन देते हैं, सिडेशन देते, पेन किलर देते, वो सब किस लिए देते हैं, कि मान लो कि जो उसने जो भी प्रोसेस की, कि जो इंट्यूबेट करते हैं वो सब करते हैं, मानो पेशेंट को वो पूरा याद नहीं रहना चाहिए उतने समय की पूरी, वो माना समझो कि वो उसकी मेमोरी लॉस हो जाए उतने समय की, वो अलग दुनिया में ही चला जाए मान, नहीं तो उसको जो उतने समय का वो प्रोसेस पूरी याद रह गई कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, तो वो कई सालों तक वो चलता है और कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जो बेहोश हो जाए, तो हमें भी ऐसे ज्ञान के इंजेक्शन लगाने हैं। इस मुरली में बाबा ने जो अलग अलग डॉक्टर को याद करा, उसमें बाबा ने कहा कि दुनिया में भी जो डॉक्टर होते वो स्पेशलिस्ट होते हैं। से बाबा ने कहा कोई आँख के, कोई गले के, कोई ऑपरेशन करते हैं और कोई सिर्फ दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि तुम ऐसे स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो यहाँ पे हम किस बात में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं? ज्ञान में, ज्ञान सुनने और सुनाने में तो सब स्पेशलिस्ट है कि अनुभव करके दूसरों को अनुभव कराना, कि मनसा सेवा में, कि तो आज के वरदान में भी बाबा ने कहा कि मनसा सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन पावरफुल होगा और संकल्प से सिद्धि, कि जो भी संकल्प करेंगे उसमें सिद्धि मिल जाएंगी। उसमें बाबा ने कहा कि जैसे आँख के डॉक्टर होते वो क्या करते हैं कि दृष्टि से ठीक करके देते हैं, तो ऐसे हमें भी क्या करना है, अपनी रूहानी दृष्टि से क्या पुराने संस्कार को भुलाना है। इसमें तो बाबा ने कहा कि एक सेकंड में सामने वाली आत्मा अपने पुराने संस्कार को भूल जाए। और दूसरा फिर बाबा ने कहा कि जैसे दवाई देते हैं कि दर्द की दवाई देते हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना है कि सामने वाली आत्मा संतुष्ट होके जाए। तो ऐसे और भी बाबा ने आगे बताया कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें जो औजार कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डॉक्टर अपने खुद के यूज़ करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट पेशेंट नहीं लेके आता है, कि वो सारा हॉस्पिटल सेटअप में या डॉक्टर के पास होता है। तो उसके रूप में बाबा ने कहा कि हमारे पास जो भी शक्तियाँ है वो शक्तियों से हमें क्या करना है, दूसरों की कमजोरियों को भुलाना है, कि कमजोरियों दूर करनी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी ऐसे सारी शक्तियाँ रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूसरों की कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं। इसमें बाबा ने एक शक्ति बताई कि सहन शक्ति, कि सहन शक्ति का यंत्र यूज़ करो तो दूसरों की कमजोरियों को दूर कर सकेंगे। तो इसमें पहले हमें पहले तो खुद की कमजोरियों को जानकर उसको दूर करना पड़ेगा, फिर हम दूसरों की दूर कर सकेंगे। तो एक जो एक दूसरी मुरली में भी बाबा ने ऐसे कहा था कि जो जिस्मानी डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर पे क्या होता है लोगों का फेथ बन जाता है कि एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी ऐसे रूहानी डॉक्टर पर भी सबका फेथ हो जाए कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें कोई ना कोई प्राप्ति अवश्य होगी। तो हमें स्वयं को इतना भरपूर रखना है कि दूसरे को भी हम प्राप्ति करा सके। इसी मुरली में आगे बाबा ने कहा कि डॉक्टर के पास जो आते हैं वो क्या बन के आते हैं, कि भिखारी बन के आते हैं, कि चाहे पानी भी दे दो या झूठी दवाई भी दे दो तो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि वो दर्द में होता है, तो उसको चाहे कुछ भी दे दो तो वो थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है। और बाबा ने कहा कि डॉक्टर जितनी चाहिए उतनी प्रजा बना सकते हैं, कि उनको बनी बनाई प्रजा मिलती है, कि प्रदर्शनी मेले में जाओ तो कि प्रदर्शनी मेले में तो बुलाना पड़ता है और खर्चा भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि बाबा ने कहा सामने से आते हैं और ऐसी कंडीशन में होते हैं कि जो भी सुना वो सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो बाबा ने कहा कि साथ साथ ज्ञान भी देना है। और इसमें बाबा ने कहा कि फिर संबंध में भी लाओ तो बच्चे भी बन जाएंगे और सिर्फ कोई ऐसे भी होंगे जो अच्छा अच्छा कह के चले जाए तो भक्त भी बना सकते हो। तो बाबा ने कहा कि दोनों सेवा साथ साथ करनी है, कि जैसे मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मेडिटेशन भी होना चाहिए कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, क्या जिस माइंड डॉक्टर की तरफ ज़्यादा हो जाता है ये छूट जाता है, या कभी कभार इसमें ज़्यादा हो जाता रूहानी में तो वो छूट जाता। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जब दोनों में बैलेंस होगा तभी सामने वालों को हम कुछ प्राप्ति करा सकेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा नहीं तो लास्ट में फिर क्या होगा कि अपने हम जिन्स को तैयार करना है। कि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि दुनिया में कितने सारे डॉक्टर है, जो सारे डॉक्टर यह ज्ञान ले ले तो बाबा ने कहा कि लास्ट में ऐसा समय आएगा जो क्या होगा कि पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो उस समय कि जैसे वर्तमान समय भी अभी चल रहा है कि डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स जो भी है उनकी कम पड़ रहे हैं, तो उन सब की ज़्यादा ज़रूर पड़ेगी। और एक मुरली में तो बाबा ने कहा है कि ऐसे ऐसे अनेक बीमारियां नई नई आती जाएंगी जिसकी दवाई ढूंढ लेंगे तब तक क्या होगा, तब तक नई बीमारी आ जाएगी, तब तक बहुत सारे की शरीर छोड़ देंगे। और इसी में आगे बाबा ने कहा था कि शमशान में भी जगह कम पड़ेगी। तो अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन इसके हिसाब से ये बात जो बाबा ने 1981 में कही थी कि वो अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो उसमें बाबा ने कहा था कि फिर दवाई भी काम नहीं करेंगी उस टाइम पे, अपनी जो दृष्टि है बाबा ने कहा तुम अपनी दृष्टि से वाइब्रेशन से सेवा कर सकते हो, कि जो दवाई तो काम नहीं करेंगी। फिर कहा था कि बहुत सारे क्या होगा, इतने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे जो नींद भी नहीं आएंगी, कि नींद की जो दवाइयाँ है वो काम भी नहीं करेंगी। अभी हमारे पास भी कितने सारे पेशेंट है जिसको कितना सारा सेडेशन देते हैं जो काम ही नहीं करता है, कंटिन्यूस देते हैं तभी जाके थोड़ा बहुत काम करता है। तो जो बाबा ने कहा था कि ऐसे कि दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी, तो वो सब अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। पेशेंट तो उसका तो बेचारा अलग होता है, उसको तो सेडेशन दे के सब करके सुला देते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा जो हाइपर होते हैं वो कौन होते हैं, बाजू वाला भी पेशेंट ही होता है कि उनके परिवार वाले। तो साथ साथ परिवार वालों को भी सेवा कर सकते हैं उस टाइम पे। तो कि इसमें शुभ भावना और शुभकामना से पेशेंट की भी पेशेंट प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रख के परिवार वालों प्रति भी रख के हम अपनी दोनों सेवा कर सकते हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है कि भाव जो ज्ञान है वो सुनाने में तो बहुत इजी है, कि किसी को भी बैठ दो तो ज्ञान तो सुना देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बात आती है तब आसान हो जाता है। कभी आसान लगता है कभी मुश्किल लगता है, वो हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता। कि तो बावन का जितना जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। और इसी मुरली बावन कहते यहाँ भी तुम बहुत सारी डिग्री ले सकते हो, बहुत सारे डिग्री लेके जिसके पास यहाँ बहुत सारी डिग्री होगी वो क्या बन जाएंगे, नामी ग्रामी बन जाएंगे, मास्टर डिग्री दर। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर की। एक मुरली बाबा ने कहा भी था कि सारे के सारे क्या है, आत्मा के डॉक्टर है, मन बुद्धि के डॉक्टर तो सब है। तो इस यहाँ पर हम कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं, जो बाबा ने कहा कि सारी डिग्री लेके हम नामी ग्रामी बन जाए स्वमान के। कि हमारे जितने स्वर बाबा ने हमको कितने सारे स्वमान दिए हैं, तो हम स्वमानधारी बन सकते हैं फरिश्ता। कि सर्वगुण संपन्न, कि सर्व जो जितने भी सारे गुण है उसमें से एक गुण को भी कंप्लीट धारण कर लेंगे तो बाकी के गुण अपने आप आ जाएंगे तो सर्वगुण संपन्न और मास्टर भगवान सर्वशक्ति संपन्न मास्टर शांति दाता दुखरता सुखकर्ता कि रूहानी ड्रिल में कि रूहानी ड्रिल में स्पेशलाइजेशन सकास देने में कि अभी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें क्या जरूरत है मनसा सेवा की तो सकास देने में स्पेशलाइजेशन की कहीं पर बैठ के कोई भी सिचुएशन में हम मनसा सेवा कर सके दूसरों को सकास दे सके कि आत्मा देखने की नेचुरल आत्मिक दृष्टि हमारी नेचुरल हो जाए माइंड रीडर वो तो और परेशान हो जाएंगे फिर माइंड रीडर बन के तो हाँ वो माइंड रीडर माना पेशेंट जो भी सामने वाली आत्मा है उसको क्या चाहिए हमारे कि उसकी भावना को समझना थॉट रीडर पल्स रीडर पल्स रीडर कि पहले के जमाने में जो आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर थे वो क्या करते थे कि पल्स की नाड़ी को चेक करके ही बता देते थे कि कौन सी बीमारी है और उस हिसाब से उसका इलाज करते थे दृष्टि स्पेशलाइजेशन जैसे बाबा ने बताया कि दृष्टि देव और सामने वाला अपने पुराने संस्कार को भूल जाए संकल्प स्पेशलाइजेशन की अपने संकल्प जैसे आज के वरदान में बाबा ने कहा कि जो भी मनसा शक्ति मनसा सेवा में करेंगे तो उसका मन शक्तिशाली हो जाएंगे और उनके सारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे जो चंचल हो गए उनको भी अचल कर सकेंगे हाँ कि किसी को ऐसे अनुभव कराना या खुद भी करना कि एक सेकंड में अशरीरी बनना ज्ञान सुनाना नहीं प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है बोल स्पेशलिस्ट हाँ कि वरदानी महादानी बोलो वो सुना दिया पहली क्लास में नहीं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि बचपन में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर का सिर्फ एक ही गुण था वो बाद में बता कि बाकी एक भी ऐसे नहीं था और परिवार में भी कोई दूर दूर तक हमारे सारे बिजनेसमैन ही है तो पढ़ाई का किसी से कुछ लेना देना नहीं टेंथ पास या तो ट्वेल्थ पास एक दो ही कजिन है जिसने कॉलेज की या बाकी सबको सीधा बिजनेस में ही लगा देते हैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे डॉक्टर बनेंगे टेंथ में ज्ञान मिला कि टेंथ में बाबा मिला फर्स्ट टाइम टेंथ में सब होशियार मानते थे पर रिजल्ट में कोई मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे फर्स्ट टाइम 80 अबव मार्क्स आए हैं रिजल्ट में तो पापा ने बोला कि साइंस लेना है तो पापा को नहीं मना कर सकते थे हमने सोचा कि कॉमर्स करके फिर कॉलेज करके पहले तो क्या था वो कि सीए बनने का था क्योंकि मैथ्स अच्छा था पहले और साइंस में इतना पल्ले नहीं पड़ता था तो टेंथ में बोला कि फिर ठीक है हमने सोचा कि ले लेते हैं साइंस फिर जो दूसरी जो साइंस की स्कूल थी उसमें एडमिशन लिया तो अभी वहाँ पर भी जैसे हमारे ए ग्रुप और बी ग्रुप ऐसे बोलते हैं कि मैथ्स और बायोलॉजी तो उसमें भी कन्फ्यूजन था कि अभी मैथ्स लेना कि बायो लेना मैथ्स लेके इंजीनियर बनते बायो लेके डॉक्टरी में आते तो एक कजिन था जो इंजीनियर था उसने बोला कि बायो नहीं लेना वो मेडिकल वाले अच्छे नहीं होते हैं तो हमने सोचा ठीक है तो मैथ्स ले लेंगे तो 7 डे का टाइम देते हैं वो स्कूल में हमको 7 डे बाद डिसाइड करके बताना है कि मैथ्स लेना है कि बायो लेना है तो जो भी 3-4 फ्रेंड्स बने वो सब ने बायो ले लिया तो हमने भी उनके साथ साथ संगदोष में आ गए हाँ तो फिर ऐसे ले लिया जो भी 10 तक कुछ पढ़ाई से हमारा कोई इतना लेना देना नहीं था 11-12 दो साल अच्छे से पढ़े हैं फिर जो 12th के बाद की बात आई है जो मेडिकल में एडमिशन होता है तो उस टाइम पे ऑफलाइन एडमिशन होता था कि गुजरात का ऐसा था कि अहमदाबाद जाना है वहाँ से सबका एडमिशन होता है पर 12th में जब हमने कोर्स किया तो हमने जो दीदी को देखा था तो तभी समय लग गया कि इनके जैसा बनना है कैसे बनना वो नहीं पता था पहली बार जब देखा था तो फिर 12th के बाद हमने तो घर पे बोल दिया कि मुझे समर्पित होना है मुझे आगे नहीं पढ़ना है तो फिर पापा ने तो साफ मना ही कर दिया कि समर्पित तो होना ही नहीं है ज़्यादा करा तो सेंटर जाना भी बंद कर देंगे तो फिर जब काउंसलिंग की बात आई, इससे पहले हमारा ऐसा फिक्स था कि या तो बीएससी करेंगे या फिर जामनगर में ही डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो जामनगर में ही ले लेंगे तो ठीक होगा, सेंटर पर भी जा सकेंगे और सब कर सकेंगे। फिर जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसमें साथ में अंदर पापा आए, अंदर जाके मुझे दूसरी जगह एडमिशन लिलवा दिया कि बोले कि अभी जो गांधीनगर में फिर एडमिशन लिलवाया, बोले कि वहाँ जाके पढ़ना है, अब तू यहाँ रहेगी तो सेंटर जाएगी ना। तो समर्पित ना हो मैं, सेंटर ना जाऊँ, इसलिए MBBS करने के लिए मुझे गांधीनगर भेज दिया कि तू वहाँ जाएगी, हॉस्टल में रहेगी तो फिर कहाँ से सेंटर जाएगी। तो इसमें भी जो पापा का बहुत धन्यवाद है, जो दो जगह से बचा के। फिर हमें लगता था, फिर जब इंटर्नशिप पूरी हुई हमारी तो तभी वापस हमने सोच लिया कि अभी हमें सेंटर पे ही जाना है, पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब क्या करना है। तो तभी वापस हमने बोला कि नहीं, हमें कुछ भी हो जाए तो दीदी सिखाते थे कि 2-3 दिन रो लेना, खाना नहीं खाना वो लोग छुट्टी दे देंगे। तो जो लोग घर से अब जाए तो जाए कैसे जाए, तो बोला ऐसे कर लेना। तो फिर जब यहाँ पर आई थी, इंटर्नशिप चल रही थी तभी यहाँ आई थी एक बार, और फिर बाद में आई थी। तो फिर इंटर्नशिप के बाद पता नहीं, इतना बड़ा सिटी होते हुए भी हम जहाँ पे रहते वहाँ पे हमें जॉब भी नहीं मिली। पूरा 1-2 महीने तक ढूंढा पर पॉसिबल ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं। फिर वापस हम गांधीनगर चले गए और गांधीनगर ही वापस MBBS के बाद वहाँ ही जॉब स्टार्ट कर दी। और फिर बीच में एक बार सेवा में आए थे और जो प्रताप सर मिले, सर को 2nd या 3rd ईयर में थी तब मिली थी। तो सर ने बोला कि आ जाओ यहाँ पर, तो इतनी आसानी से हाँ भी बोल दिया घर वालों ने। तो उसमें भी बाबा ने एक माता को निमित्त बनाया, जो पांडव भवन में सेवा में आते, यहाँ से मिलके मैं घर जा रही थी, बस में वो माता जी मिल गई। तो उससे ऐसे बात हुई हमारी कि यहाँ पे ऐसे आई थी, सबको मिल के बोला है कि यहाँ पे ज्वाइन कर लो ग्लोबल में। तो मैंने बोला घर पे तो पूछ नहीं सकती हूँ, क्योंकि घर पे तो भी ऐसे पापा ने ऐसे बोला था कि घर पे तुझे सेंटर चाहिए तो बना दूंगा, कि पर घर पे सेंटर चलाना, सेंटर पे नहीं रहने दूंगा। अभी बीच बीच में चलते हैं, फिर नहीं चलते, अभी ऐसा चलता है, पहले पूरा चलते थे, 2-3 साल तक सब ज्ञान में चल रहे हैं पूरा। तो फिर उस टाइम पे पता नहीं, वो माता ने बोला खिलाओ मैं आपकी मम्मी से बात करती हूँ, ऐसे ही वो उसने मम्मी से बात कर ली और सीधा उसने ऐसे ही बता दिया कि आपकी बेटी को ग्लोबल में भेज दो। मैंने बोला, मैंने घर पे एक बात भी नहीं बताई कि मैं अभी ऐसे मिलके आई हूँ हॉस्पिटल में सबको। पता नहीं जब मैं घर पहुँची तो वो लोगों ने बोला कि ठीक है जाना है तो हम पर एक बार देखने आएंगे कि हॉस्पिटल कैसी है, वहाँ के लोग कैसे है, उन सबको हम देखेंगे फिर तुझे परमिशन दे देंगे जाने की। तो वो एक बात में ही पता नहीं कैसे वो लोग भी मान गए रास्ते में ही, और फिर बाद में ही आए थे 1 हफ्ते के बाद ही देखने के लिए। तो सबसे मिले थे, सर से मिले थे, प्रताप सर से मिले थे, तो सबको मिलके भी अच्छा लगा। और हम जिस दिन आए उसी दिन जानकी दादी का क्लास था ऑडिटोरियम में, अंशा दीदी एडमिट थे। तो फर्स्ट दिन आते ही दादी का क्लास सुना तो पापा ने बोला कि अभी हमें और कुछ नहीं देखना है, तू आ जा। तो ऐसे ऐसे ही परमिशन मिल गई आसानी से और यहाँ आ गए, नहीं अभी बन गए इन राइटिंग। इसमें पहले भी मैं जब शुरू में जब ज्ञान में आई थी ना, तो एक बार आते ही 6 महीना 1 साल ही हुआ होगा, तभी दीदी के साथ में मधुवन आई थी। सिर्फ 4-5 घंटे ही हम रुके थे, दीदी को सेवा में जाना था। तो उस टाइम पे भी मैं जानकी दादी को मिली थी, तब मैं जानती नहीं थी कि ये दादी है। तो दीदी ने बोला था कि इसको समर्पित होना है, पर वो पेरेंट्स नहीं मान रहे वो सब। तो दादी ने बोला कि इसका अभी नहीं समर्पित का पाठ है। तो तभी हमें समझ नहीं आया था कि दादी ने क्या बोला, क्या कहा वो कुछ, क्योंकि हम बाद में पता चला कि ये दूसरा प्लान था। तब हम दादी को जानते भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही आए थे मधुवन और मिल के गए थे। फिर उसके बाद वापस 3 या 4 साल बाद मधुवन आए थे। हाँ, तो वही कि जानकी दादी के यहाँ पर जितने भी दादी है उनको मैं सिर्फ पर्सनली जानकी दादी को ही मिली हूँ, बाकी एक भी दादी को ऐसे पर्सनली जाके नहीं मिले हैं। पहले भी जैसे बोला कि 2011 या 12 की बात है, तभी दादी से मिले थे, जानते भी नहीं थे कि ये दादी है। तभी दादी ने बोला था कि इनका अलग पार्ट है, तो तभी हमें नहीं समझ आया था कि ये क्या है वो सब, क्योंकि तब तो हमारे मन में वो था समर्पित का। फिर यहाँ पर भी जब पेरेंट्स आए कि यहाँ हॉस्पिटल में इनको छोड़ना कि नहीं छोड़ना है। तो तभी भी दादी का क्लास था और दादी का क्लास सुन के हमको छुट्टी मिल गई कि नहीं यहाँ रह सकते हैं, और लास्ट में भी दादी की सेवा करने का चांस मिला। उसमें भी सर का और हंसा दीदी का उन सब का कि बहुत धन्यवाद कि हमको चांस दिया कि हम दादी की सेवा कर सके। पर जो बाबा बोलते हैं कि जो दादियों की कर्मातीत स्थिति यही हो जाते थे, तो हम कितनी बार बीच में देखते थे, लास्ट समय में दादी इतना बोलते नहीं थे, सिर्फ बाबा बाबा ही बोलते थे, और 3 से 4 के बीच दादी जरूर एक बार उठते थे। इतनी भी दादी थे बीमार, पर एक बार आंख जरूर खोलते थे बीच में भी। और लास्ट 3 दिन में दादी बाबा और मम्मा, बाबा और मम्मा, ऐसे दोनों साथ में बाबा मम्मा ऐसे दिन में 3-4 बार बोलते थे। तो ये भी हमारे कि भाग्य की बात है कि लास्ट में हम दादी के साथ, उसमें मैं 2 घंटा तो सो गई थी, 12 बजे उठी थी। लास्ट में जो दादी की स्थिति थी, तो लास्ट में यहाँ जब वहाँ से जब दादी को, दादी 17th शाम को ऐसे सीरियस हुए थे, माना जैसे दूसरे पेशेंट होते, पता बाबा जो बोलते हैं कि हिसाब किताब है, तो हमने देखा कि इतनी सारी दादियों ने तपस्या की है, फिर भी उन लोगों को भी कर्म भोग भोगतना पड़ता है थोड़ा। तो माना दादी ऐसे थोड़े रेस्टलेस टाइप हो रहे थे, क्योंकि वो बाइपेप का पूरा मास लगा हुआ था, वो बहुत प्रेशर देते पर बीच में। और 18th को तो दादी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, जो सेप्टिक शॉक बोलते हैं, बीपी चला जाता है, यूरिन आउटपुट नहीं होता, ऐसे अहमदाबाद में 3 बार हो चुका था। तो 18th को तो हमें ऐसे लगा ही था कि दादी ने अभी शरीर छोड़ दिया। तो सर से बहुत सारे से, और डॉक्टर भी ऐसे ही कि नहीं हम डायलिसिस करना है, वो करना, पर जो दादी का फाइनल डिसीजन था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो 18th को शाम को पता नहीं हंसा दीदी ने बोला कि कुछ भी करो, कल मुझे दादी को लेके मधुबन जाना है। वो ऐसा इतना बोल दिया फॉरवर्ड कि नहीं अभी कुछ भी करो, जो भी करो, मुझे लेके जाना है दादी को। वो दादी की कंडीशन भी नहीं थी कि हम ऐसे लेके आए। तो वहाँ के डॉक्टर ने, एक और डॉक्टर भी मान गए है कि चलो ठीक है आसानी से, पर एक डॉक्टर नहीं मान रहा था। वो बोले कि पेक बना के फिर दादी को भेजो, तो यहाँ से पेट में से नली डालते हैं जिसमें सीधा खाना जाता। तो हंसा दीदी ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ही हम फिर 19 को निकल गए थे कि दादी को, तब एक ही संकल्प था कि बस कैसे भी करके हॉस्पिटल तक या तो शांतिवन तक पहुँचा देना, कि दादी रास्ते में कहीं शरीर ना छोड़े। कि दादी की ऐसी कंडीशन थी वहाँ हम जब लेके आए, और दादी के साथ में भी अहमदाबाद से लेके जो माउंट का ट्रैवलिंग किया, तो मुझे भी मोशन सिकनेस बहुत, चक्कर आना, वोमिट होना, 1% भी सेंसेशन नहीं हुआ था। तो वो दादी साथ में थे, तो वो दादी का पावर था कि अहमदाबाद से लेके वहाँ तक, नहीं तो ट्रैवलिंग होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर दादी का, दादी भी पहुँच गई, और पता नहीं वो इतना अनुभव था कि पता ही नहीं चला कि कैसे यहाँ तक पहुँच गए है। यहाँ हॉस्पिटल में जैसे ही दादी को लेके आए, धीरे धीरे दादी रिकवर होने लगे थे, और माना दादी को बैठाना, दादी थोड़ा बहुत ही एकाध शब्द बीच में बोलते भी थे। और जिस दिन दादी ने शरीर छोड़ा, तो वैसे भी वो देखो बाबा का और दादी का जो प्लान था कि हम 19 को यहाँ पहुँच गए, और बाद में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया था, 23 से स्ट्रिक, नहीं तो अहमदाबाद में ही रह जाते हैं, कि आना ही मुश्किल था कि कैसे आ पाए ऐसे। तो यहाँ पर आ गए, और 2 दिन तो ऐसे थे कि दादी पूरे माना सोए ही थे 2 दिन यहाँ आने के बाद भी। फिर धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई, और जिस दिन दादी ने शरीर छोड़ा है, उस दिन दोपहर में और शाम को दोनों टाइम पे हंसा दीदी ने दादी को अपने हाथ से खाना खिलाया है, कि दादी ने खाना भी खाया था। और दादी की जो इच्छा थी कि मैं जब शरीर छोड़ूं तब ऑक्सीजन ना लगा हो, तो पिछले 3-4 दिनों से ऑक्सीजन कंप्लीट हट गया था, बिना ऑक्सीजन पे दादी सब मेंटेन कर रहे थे। और उस दिन दादी को बिठाया भी था, और दादी को जो पुराने वीडियो है वो सब दिखाया था प्रोजेक्टर लगा के, तो वो पूरा दादी ने देखा भी था। और पिछले पूरे साल में दादी ने जहाँ भी सेवा की थी उनका सारा, तो वो दिन ऐसे लगा ही नहीं था कि इतने अचानक से है। और फिर शाम को 9 बजे से पता नहीं दादी ऐसे आवाज़ कर रहे थे, तो वो लोगों को पता था, देवी बहन और हंसा बहन को, कि दादी को अभी पेट में दर्द हो रहा है। तो उस टाइम बार प्रकृति भी थोड़ी हलचल हो रही थी, बारिश भी शाम से ऐसे ही शुरू हुई थी, तो वो जो हमें दादी से वैसे मस्ती कर रहे थे कि दादी आपका पेट शांत कर दो, आपका पेट हिल रहा है तो बार प्रकृति भी हिल रही है। तो ऐसे ही फिर शाम को तो वो सब पेन किलर और वो सब दिया था शाम को। फिर 11:30-12 बजे से ऐसे ही अचानक से दादी सीरियस हुए, और फिर पहले भी जैसे बढ़ता था शुगर बढ़ गया और वो सब हुआ, और फिर जो कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें हार्ट काम करना बंद कर देते हैं वो भी 12:30, ये सारी प्रोसेस 12 से लेके 2, 11:30 से 2 बजे के बीच में। सर भी आ गए थे तुरंत ही, तो वो तो कुछ करना नहीं था, पर दादी माँ ना समझो कि इतना शांति से गए हैं, और हंसाबेन ने अपने बाहों में लिया था दादी को लास्ट में जब शरीर छोड़ा तब, तो वो लोग भी इतना सेटिस्फाइड हुए थे कि हमारी हॉस्पिटल थी तो हम सब कर सके। नहीं तो बाहर जहाँ पे स्टर्लिंग में दादी को रखा था एक लोग को ही जाने देते थे अंदर एट ए टाइम, बाकी कोई भी आ जाए चाहे कोई भी मिलने आए तो दूसरे को बाहर जाना पड़ता था, तभी एक को जा सकते हैं। तो दादी की जो भी इच्छा थी कि मैं जब भी शरीर छोड़ूँ तो मधुवन में शरीर छोड़ूँ, तो उस टाइम पे दादी हॉस्पिटल में ही थे और ऑक्सीजन भी नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ एक नाक में नली थी जिससे खाना जाता है, और उस दिन पे दादी ने खाना भी खाया था दोनों टाइम। और बाकी जो दादी की इच्छा थी कि जो लास्ट राइड होती है उसमें मेरे खर्चा ना हो, तो उस पर भी देखा कि खर्चे की तो बात ही नहीं थी, पूरा ही लॉकडाउन था, बहुत ही कम लोग थे, सिंपल रीति से इतना, तो कि जो भी महान आत्मा होते बावन बोला उनका सारा संकल्प सिद्ध होते हैं, कि तो ऐसे ही लगता था कि बाबा और दादी दोनों मिल के प्लान कर रहे हैं। हम तो सिर्फ वहाँ के जो डॉक्टर थे वो भी ऐसे बोलते थे, अहमदाबाद में जो डॉक्टर थे हम देखते थे कि वो जब भी दादी को मिलने आते थे दादी का पाँव छूते थे, चाहे कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे। जब दादी को लेके हम यहाँ पे आए थे तो 3-4 के तो आंखों से आंसू भी आ गया था कि नहीं यहाँ ही रखो, कि हमें माना उनको इतनी भावना बन गई थी कि कोई महान आत्मा है। वो बोलते थे कि हम तो सिर्फ निमित्त है, हम क्या कर सकते हैं, चलाने वाले तो यही है। और जब दादी कॉन्शियस थे और दादी को पूछते थे दादी आपको कोई तकलीफ है, तो ऐसे हंसाबेन तरफ इशारा करते थे इनको पूछो कि कुछ है या नहीं, तो बोल तो ऐसे दादी के अपना पूरा प्लानिंग के साथ दादी ने पूरा अपना। और लास्ट की स्थिति भी देखा जाए तो दादी की इतनी वो पावरफुल थी, वहाँ पे बहुत कम लोग थे जब दादी ने शरीर छोड़ा तब। ओम शांति।